हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हॉस्पिटल में अंकित और अनय के बीच काफी देर तक इस बात पर बहस हुई, जब तक पुलिस और कांस्टेबल जाकर मनस्वी से मिल रहे थे और उसका बयान ले रहे थे। लेकिन अनय को कहीं ना कहीं मनस्वी पर पूरा विश्वास था कि इन सब में वो कहीं पर भी उसका नाम नहीं लेगी, और मनस्वी ने भी यही किया। उसने कहा, ये मेरी ही गलती है और मैंने धोखे से ऐसा किया। मैं बस एक प्रैंक कर रही थी और गलती से मेरा हाथ कट गया। उसके इस बात पर पुलिस वालों को पूरी तरह से भरोसा तो नहीं हुआ, क्योंकि गलती से कटने पर इतना गहरा कट नहीं लगता है। लेकिन जब वो खुद ही और कुछ बोलना नहीं चाहती थी, तो उन लोगों ने भी उसे फोर्स नहीं किया, क्योंकि ऐसे केस जितनी जल्दी निपट जाएं उतना उन लोगों के लिए ही अच्छा होता है। मनस्वी का बयान नोट करके पुलिस और कांस्टेबल वहां से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने अनय की तरफ देखते हुए कहा, अब आप जाकर मिल सकते हैं अपनी वाइफ से। पुलिस इंस्पेक्टर की बात पर अनय ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और दरवाजे से अंदर की तरफ जाने लगा। इंस्पेक्टर ने अनय को मनस्वी का हस्बैंड कहकर पुकारा। इस बात से अंकित ने घूर कर उसकी तरफ देखा, लेकिन अनय ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया और वो अंदर चला गया। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर आते ही अनय ने देखा कि हॉस्पिटल बेड पर मनस्वी लेटी हुई है। उसका चेहरा पहले से बहुत ही ज्यादा सफ़ेद पड़ गया था, और एक ही दिन में वो बहुत ज़्यादा बीमार भी लग रही थी। उसके हाथ पर बैंडेज बंधा हुआ था और दूसरे हाथ पर वीको लगा हुआ था, जिसे उसे अभी भी खून चढ़ाया जा रहा था। लेकिन अभी वो होश में थी। अनय उसे इस हालत में देखकर बहुत ही बुरा फील कर रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम एकदम भारी हो गए हैं और आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। उसे लग रहा था कि वो कैसे मनस्वी का सामना करेगा, जबकि वो खुद ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। लेकिन उसने सिर्फ ऐसा बोला था, उसे इस बात की भनक नहीं थी कि वो सच में ऐसा कुछ कर देगी। इसलिए वो उसे डांटना भी चाहता था, जैसे वो दोबारा कभी ऐसा कुछ ना करे। ये सोचकर हिम्मत करते हुए अनय आगे आया। मनस्वी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, अब तो भरोसा करते हो ना तुम मुझ पर, मेरे प्यार पर अनय। अनय उसके बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आकर उसे डांटता हुआ बोला, एक नंबर की सन की पागल औरत हो तुम, ऐसा कौन करता है? और ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी? लेकिन तुम, मनस्वी ने बहुत ही ज़्यादा मायूसी से कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, और वैसे भी जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, जिसमें कोई भी मेरा अपना नहीं है, किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं जिंदा रहूं या मरूं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा किसी को। मनस्वी की ये बात सुनकर अनय थोड़ा सा इमोशनल होता हुआ उसकी तरफ ही देखने लगा, और उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी इस बात का क्या जवाब दे। लेकिन तभी अनय के पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके होने या ना होने से, लेकिन बात बस इतनी सी है कि शायद आपने गलत लोगों से उम्मीद रखी हुई है। ये आवाज़ आते ही अनय ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, और मनस्वी ने भी उसकी तरफ ही अपनी नज़रें घुमाई, और तभी वहां से आगे आता हुआ अंकित उन दोनों को दिखाई दिया। मनस्वी ने उसे सामने देखकर कहा, अंकित तुम यहां अस्पताल में क्या कर रहे हो? यहां पर मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। अंकित ने बेवजह ही माफ़ी मांगते हुए कहा, बस अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि शायद जब आपको ज़रूरत थी उस वक्त मैं आपके साथ नहीं था। आई एम रियली सॉरी मैडम, आपके साथ इतना सब हो गया। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी या किसी की भी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो बस। मनस्वी इतना बोलते हुए रुक गई, और उसने एक नज़र अनय की तरफ देखा, फिर वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। मैडम, मुझे सब कुछ पता है, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और इस आदमी की वजह से आपने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्यों? आपकी जान बहुत ही कीमती है, कम से कम मेरे लिए, मेरा मतलब है हमारे लिए, हम सबके लिए, स्टाफ और जितने भी लोग आपके लिए काम करते हैं। अंकित ने तुरंत ही अपनी बात बदल दी। इस पर अनय ने उसे गुस्से से घूर कर देखा, जबकि मनस्वी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे लेकिन अब मैं ठीक हूँ और जिंदा भी। मनस्वी लगभग मौत के मुंह से बाहर आई थी, लेकिन अभी भी वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी। उसकी ये बात सुनकर अनय ने फिर से उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोला, बहुत आराम से तुम ये बात बोल लेती हो ना, जिंदगी और मौत की कोई कीमत नहीं है ना तुम्हारे लिए मनस्वी, तुम्हें तब पता चलेगा जब कोई तुम्हारा अपना इस हाल में होगा तुम्हारे सामने। इतना बोलते हुए अनय की आंखों में आंसू आ गए, जैसे मनस्वी से छुपाते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगा। मनस्वी ने धीरे से अपना हाथ उठाते हुए उसके हाथ पर रखा और बोली, मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है अनय, तुम्हारे अलावा, और तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशन में मैं सोच भी नहीं सकती, प्लीज ऐसा मत बोलो। उसके इस बात पर अनय कोई भी जवाब दे पाता, इससे पहले ही अंकित ने और ज्यादा आगे आते हुए कहा, मैडम आप प्लीज़ अभी अपना ध्यान रखिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। और आप इस तरह से, मुझे पता है वैसे भी ये आदमी सिर्फ आपका नाम का हस्बैंड है और इसे आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और अगर होती तो ये कभी आपसे ऐसा कुछ करने को नहीं बोलता। आज अगर आप इस हालत में हैं तो सिर्फ इसकी वजह से। अंकित की ये बात सुनकर मनस्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसे कब, कैसे और कहाँ से पता चला। नहीं अंकित, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और तुम, उसे समझाने की कोशिश करते हुए मनस्वी ने बोलना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों अनय को बहुत ही बुरा लग रहा था। अंकित जिस तरह से सारे इल्ज़ाम उस पर लगा रहा था, अनय ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। अनय ने एकदम ही अपना हाथ मनस्वी के हाथ से वापस ले लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, गलत क्या, बिल्कुल सही समझ रहा है ये। और समझ नहीं रहा है, इसे सब कुछ पता है, शायद कुछ ज़्यादा ही। और तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ था? तुम्हें उन्हें सच बताना चाहिए था मनस्वी, मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए अपनी गलती की। अनय की ये बात सुनकर मनस्वी और अंकित दोनों ने ही हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उन दोनों में से किसी को भी उस वक्त अनय के ऐसा कुछ बोलने की उम्मीद नहीं थी। अनय, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? और ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्या बताती मैं? मैंने खुद ही किया जो किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तो सारी तुम्हारी ही है, लेकिन शायद मुझे भी वैसे बोलना नहीं चाहिए था। और ये तुम्हारे बॉडीगार्ड को कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा है, शायद इसे ही सबसे ज़्यादा फिक्र है तुम्हारी, इसलिए तुम इससे ही बात कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। इतना बोलकर अनय अपनी जगह से उठा। उसने एक नज़र अंकित की तरफ देखा और फिर चुपचाप वहाँ से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ ही बढ़ गया। पीछे से मनस्वी ने उसे आवाज़ लगाई, अनय रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात सुनो प्लीज़ एक मिनट। मनस्वी ने पीछे से आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर भी अनय वहाँ पर नहीं रुका और वो बाहर निकल गया, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और सबसे ज़्यादा अंकित पर, और साथ ही वो थोड़ा सा इमोशनल भी था मनस्वी को ऐसी हालत में देखकर और जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचते हुए, इसलिए ही वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था।
अंकित ने उसके ऐसे बिहेवियर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और मनस्वी की तरफ आगे आते हुए बोला, मैम देखा उस आदमी को, उसका बेवजह का एटीट्यूड, और उसे आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और उसके लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? मनस्वी ने उसे डांटकर चुप रहने को कहा। स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट अंकित, स्टॉप बिहेविंग लाइक एन इडियट। और तुम्हें मैंने इतना बोलने की परमिशन नहीं दी है, मेरा और मेरे हस्बैंड का जो भी रिश्ता है उसके बीच तुम्हें क्या, किसी को भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लीज़ चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से अगर अनय फिर से मुझसे नाराज़ हुआ ना, तो समझ लेना तुम्हारी जॉब भी नहीं रहेगी। मैडम, मैं पिछले 4 सालों से आपके साथ हूँ और वो आदमी सिर्फ कुछ महीनों से, अंकित ने तुरंत ही सफाई देते हुए कहा। हाँ तो तुमसे भी ज़्यादा पुराना स्टाफ है मेरे पास, तो क्या उन सबको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का VIP पास बनवा कर दे दूँ मैं? और पिछले 4 सालों से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरे साथ नहीं हो, और वो मेरा हस्बैंड है जो हमेशा मेरे साथ रहा है, हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहा है। तुम जानते क्या हो हमारे रिश्ते के बारे में, जो तुमने हमारे रिश्ते को सिर्फ नाम का रिश्ता बोल दिया? अगर मैं उसके लिए खुद की जान दांव पर लगा सकती हूँ तो तुम खुद ही समझ जाओ हमारे रिश्ते की गहराई। वैसे तुम्हें समझने की इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस इन सबसे दूर रहो और चुपचाप अपना काम करो, तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मनस्वी ने उसे पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए बताया। एक साथ में इतना सारा बोलने की वजह से उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी, तो फिर अंकित ने भी उसे और परेशान नहीं किया और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया। लेकिन वो अस्पताल से कहीं भी नहीं गया और उसने डॉक्टर को अंदर भेजा मनस्वी को चेक करने के लिए, और ये भी बताया कि उसके हालात ख़राब हो रहे हैं। ये सुनकर अनय, जो कि बाहर खड़ा था, वो तुरंत ही भागते हुए अंदर आया और उसने देखा कि जब तक मनस्वी के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था। अनय जब अंदर आया तो मनस्वी ने आंसू भरी आंखों के साथ लेटे हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन चाहकर भी वो कुछ बोल नहीं पाई, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे इतनी तकलीफ़ में देखकर अनय को भी तकलीफ़ महसूस हुई, और अभी उसके हाथ का जख्मी भरा नहीं था और ऊपर से इस तरह से उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ये देखते हुए अनय भागकर उसके पास आया और उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है मनस्वी को, वो ठीक तो हो जाएगी ना, चोट ज़्यादा तो नहीं है ना, और ब्लड लॉस? क्रमशः अनय को अगर सच में इतनी ही फिक्र है मनस्वी से, तो फिर वो उसके सामने दिखता क्यों नहीं है, और अंकित क्यों आ रहा है, वो उन दोनों के बीच क्या है, क्या वो सच में मनस्वी को पसंद करता है और उसके लिए उसके मन में कुछ फीलिंग है? और ये सब जानने के बाद क्या होगा मनस्वी का जवाब? क्योंकि अंकित के बर्ताव देखकर अनय को तो अब तक कहीं ना कहीं उसके इरादे समझ आ गए हैं, लेकिन क्या ये बात वो मनस्वी को बताएगा और क्या वो उसकी बात पर यकीन करेगी?